नमस्कार भारत, तारीख 17 नवंबर, दिन शनिवार। मैं हूँ मानसी दास। कोर्ट का आदेश, व्हाइट हाउस लौटाए सीएनएन पत्रकार का प्रेस पास। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
We want total freedom of the press. It's very important to me. It's more important to me than anybody would believe.
फिर खुले सबरीमला मंदिर के कपाट, फिर उठा वही सवाल, क्या इस बार महिलाओं को मिलेगा प्रवेश?
महिलाओं में इतना इस तरह का जोश है कि शायद फिर भी वो कोशिश करेंगे मंदिर में जाने की। उस समय पुलिस का क्या रुख होगा वो भी देखना पड़ेगा।
और साथ ही सुनाएंगे शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर विवेचना।
बाल ठाकरे की इतनी ऊंची आवाज और फिर उन्होंने उसको और ऊंचा करके उन्होंने फिर मनोहर जोशी की तरफ देख करके बोला, कायरे मान्या तू पीतो सुनाई का। मनोहर जोशी कुछ कह नहीं सके।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कमलेश मठेनी से। अमेरिका में कोर्ट के आदेश के बाद सीएनएन के वरिष्ठ पत्रकार जिम एकोस्टा का प्रेस हार्ड पास लौटा दिया गया है। फेडरल जज टिमोथी केली ने व्हाइट हाउस को पास लौटाने का निर्देश दिया था। जज ने पास रद्द करने के फैसले को अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन बताया। वहीं जिम एकोस्टा ने अदालत के इस फैसले की प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन युद्ध के दोनों पक्षों ने स्वीडन में शांति वार्ता के लिए सहमति जताई है। यमन में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि मार्टिन ग्रिफिथ्स ने सुरक्षा परिषद से कहा कि सरकार और हुथी विद्रोहियों के बीच युद्ध के दौरान ये प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण क्षण हो सकती है। बीबीसी से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र में पेरू के राजदूत गुस्टोवा मेसा क्वाडा ने सभी पक्षों से अपील की कि बातचीत को हकीकत बनाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा,
We hope that all the parties and the countries with influence on the parties can
हम उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष और उनसे जुड़े देश इस संघर्ष विराम में योगदान देंगे। विशेष राजदूत विभिन्न पक्षों के साथ बात करके समाधान के लिए जरूरी राजनीतिक समझौता का खाका तैयार करने वाले हैं। ये थे संयुक्त राष्ट्र में पेरू के राजदूत के शब्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका के विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट मुलर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब लिख लिए हैं। रॉबर्ट मुलर साल 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की भूमिका की जांच कर रहे हैं। इन चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ये जवाब खुद लिखे हैं, हालांकि अभी उन्हें मुलर को सौंपा नहीं गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए कहा, मुझसे कई सवाल पूछे गए थे, मैंने उनका बहुत आसानी से जवाब दे दिया। आपको हमेशा उन लोगों के सवालों का जवाब देते हुए सावधान रहना चाहिए जिनके इरादे खराब होते हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्व कैम्ब्रिजशायर से सांसद स्टीफन बार्कले को टेरिजा मे कैबिनेट में नए ब्रेक्जिट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। स्टीफन बार्कले ब्रेक्सिट के समर्थक माने जाते हैं। उनसे पहले डोमिनिक राब ब्रेक्जिट सेक्रेटरी का पद संभाल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री टेरिजा मे के ब्रेक्जिट पर नया मसौदा लाने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि बार्कले का काम ब्रेक्जिट के लिए देश के भीतर तैयारियां करना होगा, न कि इससे संबंधित बातचीत में हिस्सा लेना। अमेरिका ने पहली बार इसराइल के गोलन हाइट्स के कब्जे की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इससे पहले अमेरिका इस तरह के मतदान से बचता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने इस प्रस्ताव को निरर्थक और इसराइल के खिलाफ पक्षपाती बताया। साल 1967 के युद्ध में इसराइल ने इस सीरिया से गोलन हाइट्स अपने कब्जे में ले लिया था। इसराइल के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कभी भी समर्थन नहीं दिया गया। वायु गुणवत्ता नेटवर्क पर्पल एयर के मुताबिक उत्तरी कैलिफोर्निया में बार बार लगने वाली आग के चलते वहां वायु गुणवत्ता का स्तर दुनिया में सबसे ज़्यादा गिर गया है। यहां की हवा भारत और चीन के किसी धूल भरे शहर से भी ज़्यादा खराब हो गई है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, हवाई यात्राओं में देरी हो रही है और लोग इंटरनेट पर मास्क के बारे में पता करने लगे हैं। यहाँ लगी भीषण आग में कम से कम 63 लोगों की जान चली गई है और 600 से ज़्यादा लोग लापता हो गए हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य से रिपोर्ट्स हैं कि वहां विद्रोही सशस्त्र समूहों के बीच मुठभेड़ के बाद 37 शव पाए गए हैं। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में अलिंदाओ शहर में इन शवों के मिलने की पुष्टि की गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमेरिका से, जहां वाशिंगटन की एक कोर्ट ने व्हाइट हाउस को निर्देश दिया है कि वो केबल न्यूज नेटवर्क यानी CNN के वरिष्ठ पत्रकार जिम एकोस्टा का प्रेस हार्ड कार्ड उन्हें लौटा दे और व्हाइट हाउस में उन्हें प्रवेश करने दें। जज का कहना था कि व्हाइट हाउस का फैसला पत्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार का उल्लंघन है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
अमेरिका में कोर्ट के आदेश के बाद व्हाइट हाउस प्रेस ऑफिस ने CNN के वरिष्ठ पत्रकार जिम एकोस्टा का हार्ड पास लौटा दिया है। फेडरल जज टिमोथी केली ने व्हाइट हाउस को पास लौटाने का निर्देश दिया था। जज ने अपने आदेश में कहा था कि पत्रकार का पास लौटाया जाना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ CNN का मुकदमा अब भी अदालत में है। जज ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का उल्लंघन भी बताया, साथ ही कहा कि एक व्यवस्थित प्रेस वार्ता कराने के व्हाइट हाउस के अधिकार के मुकाबले एकोस्टा के संवैधानिक अधिकार अधिक महत्व रखते हैं। जिम एकोस्टा ने अदालत के इस फैसले की प्रशंसा की है। उन्होंने कोर्ट से बाहर आकर कहा,
I just want to say something very briefly and that is I want to thank all of my colleagues in the press.
मैं बस कुछ संक्षेप में कहना चाहता हूं। मैं अपने सभी सहकर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस हफ्ते हमारा साथ दिया। साथ ही मैं इस फैसले के लिए जज को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और चलिए अपने काम पर लौट जाएं। ये थे CNN के वरिष्ठ पत्रकार जिम एकोस्टा। इस फैसले के बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी टीम प्रेस वार्ता के लिए नए नियमों पर काम कर रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने पत्रकारों को सम्मान और शिष्टाचार बनाए रखने की नसीहत भी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा,
We want total freedom of the press. It's very important to me. It's more important to me than anybody would believe.
हम पूरी तरह प्रेस की आज़ादी चाहते हैं। यह मेरे लिए किसी और से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको व्हाइट हाउस में सम्मान के साथ काम करना चाहिए। साथ ही हम कुछ मानक तय कर रहे हैं जिसके लिए कोर्ट ने अनुरोध किया है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये मामला 7 नवंबर को शुरू हुआ था जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति और एकोस्टा के बीच बहस हो गई थी। इसके बाद 8 नवंबर को एकोस्टा के प्रेस हार्ड पास को वापस ले लिया गया और उन्हें व्हाइट हाउस में प्रवेश करने से रोक दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सरकारी कर्मचारी ने जिम एकोस्टा से माइक छीनने की कोशिश की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। बाद में डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने कहा था कि CNN संवाददाता जिम एकोस्टा की मान्यता को एक महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में रद्द किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद CNN ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि ये एकोस्टा के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह है। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि व्हाइट हाउस पत्रकार की मान्यता रद्द करने के लिए एक बार फिर से गुजारिश करेगा या नहीं।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। अभी अभी मिल रही खबरों के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि अगर व्हाइट हाउस प्रेस वार्ता में पत्रकार नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वो प्रेस वार्ता से उठकर चले जाएंगे।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
कार्यक्रम में अब लौटते हैं भारत की तरफ। कल शाम केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर के कपाट एक बार फिर खुले। दर्शन के लिए पहुंची सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई को भारी विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें हवाई अड्डे से ही पुणे वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस पूरे वाकये ने मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की इजाजत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब से कुछ देर पहले मैंने कोची में मौजूद हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से बात की और उनसे जाना कि वहां फिलहाल तनाव की क्या स्थिति है।
जी, फिलहाल हालात ये हैं कि तूफान गाजा के वजह से केरला में बहुत सारे जगहों पर पेड़ वेड़ गिरे हैं, लेकिन इतनी बारिश के बावजूद कल शाम को जब 5 बजे जब मंदिर खुली तो श्रद्धालु अपनी तीर्थ यात्रा शुरू कर दिए थे। कल रात करीब 11 बजे तक मंदिर खुली थी और आज सुबह 4 बजे से मंदिर खुली है और पूजे होते रहेंगे।
मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मद्देनजर प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं, इस बारे में क्या आपको कोई जानकारी है अभी?
जी, अभी तक करीब 20,000 पुलिस कर्मी सिर्फ सबरीमला के लिए तैनात किए गए हैं और इसका मतलब ये है कि केरला राज्य के 50% पुलिस कर्मी सिर्फ सबरीमला ड्यूटी पे लगे हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से जो तनाव है तो उसको काबू में रखने के लिए केरला की पुलिस तैनात की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब पिछली बार मंदिर के कपाट खुले थे तो महिलाएं वहां प्रवेश नहीं कर सकी थी। आपको क्या लगता है, महिलाओं को इस बार प्रवेश मिल पाएगा? इस आदेश का पालन कर पाएगी सरकार?
ये 64 दिन का जो मंडला मंगलविलकू के अवसर पर तनाव तो है ही, शायद स्वामी अय्यप्पा के मंदिर में 800-900 साल की मंदिर है, तो पहला समय है जब इस तरह का तनाव है। और शायद अभी ये देखना होगा कि कल जो तृप्ति देसाई के साथ जिस तरीके से एयरपोर्ट के बाहर भी निकलने का मौका नहीं मिला उनको, शायद इसका असर कुछ तो पड़ेगा ही दूसरे महिलाओं पर जो चाहते थे कि अभी इस पवित्र अवसर पे वो मंदिर में जाएं, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं हो क्योंकि महिलाओं में इतना इस तरीके का जोश है, फिर भी वो कोशिश करेंगे मंदिर में जाने की। उस समय पुलिस का क्या रुख होगा वो भी देखना पड़ेगा।
इमरान साहब, ये मंडला मगर विलकू क्या होता है?
केरला में कल से जो मंदिर खुली है ये अगले 64 दिन तक खुली रहेगी और इसको केरला में ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा का समय माना जाता है, खासकर स्वामी अय्यप्पा के मंदिर में।
केरला सरकार का इससे पहले ये रुख था कि वो समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जाना चाहती, लेकिन बीते दिनों में सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर जिस तरह की तनाव की स्थिति रही है, केरल सरकार ने अभी अपना रुख बदला है।
हाँ, बाकायदा बदला है क्योंकि इतने दिनों तक वो ट्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को इजाजत नहीं दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और ये पेशकश करें कि जो 28 सितम्बर का आदेश था 10 और 50 साल की उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश करने का जो इजाजत दी गई थी उस पे रोक लगाने के लिए अभी त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को सरकार ने इजाजत दी है और शायद जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के सामने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की याचिका पेशकश की जाएगी। ये कहते हुए कि 28 सितंबर का जो आदेश है जिसमें हर उम्र की महिलाओं को इजाजत दी गई थी मंदिर में प्रवेश करने के लिए उस पे मंडला मगरविलक्कू का जो के अवसर पर वो उस पे रोक लगाया जाए।
जानकारी दे रहे थे इमरान कुरैशी। राजस्थान में लोग इन दिनों चुनावी चर्चा में लगे हुए हैं। जोधपुर शहर के गली मोहल्लों में हताई एक ऐसा मंच है जहां लोग एक साथ बैठकर समसामयिक मुद्दों पर रोज चर्चा करते हैं। घर के बाहर चबूतरों पर हताई मंच दिखाई देता है और देर रात तक लोग वहां देश विदेश के मुद्दों पर बात करते दिखते हैं। इस समय हताई में चर्चा हो रही है राजस्थान में होने वाले चुनावों की। सुनिए नारायण बारेठ की खास रिपोर्ट।
सबका साथ विकास, जनता का विश्वास निभाते हैं पलू पलू में मोदी जी का साथ और भारत का।
कहीं कोई नरेंद्र मोदी की तारीफ में तराने सुनाता है तो कहीं कोई कांग्रेस की प्रशस्ति का गान कर रहा है। जोधपुर के अंदरूनी हिस्से में सांझ ढलते ही चबूतरों पर लोग जमा होने लगते हैं और फिर देर रात तक चर्चा करते रहते हैं। जोधपुर ने संवाद के इस पारंपरिक तरीके को सैकड़ों सालों से सहेज कर रखा है, इसे हताई कहते हैं। ऐसी एक हताई में जमा लोग विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते मिले।
यहाँ जो राजनेता आते हैं ना, ये पूछते हैं कि कितनी सीटें आएगी। मोदी की हवा चली थी तो कैसी आई थी सीटें? 153 आ गई थी ना, तो ये हवा चलती है ना सर, तो ये स्थिति होती है। और अब की प्लस पॉइंट ये रहेगा, इन्होंने काम कुछ ही नहीं किया। ये स्थिति थी कि पेट्रोल के 5 पैसे बढ़ते थे ना, तो ये धरतियाँ आ जाते थे और सड़कों पर आंदोलन करते थे। आज क्या हो रहा है?
अंतर्राष्ट्रीय भाव आधे होकर भी आज क्या हो रहा है? जनता को कांग्रेस के भाव से
टुकड़ा में बराबर बढ़े है ना।
ये सिलसिला शाही दौर में शुरू हुआ था लेकिन अब भी सलामत है। इस हताई में शरीक बहस डॉक्टर उमेदराज तातेड़ कहते हैं,
हताई के अंदर हम लोग क्या एक तरह से बातचीत का जरिया है ताकि हम लोग यहाँ पर आके और एक दूसरे की समस्याएं वगैरह होती है, वर्तमान में माहौल क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सारा डिस्कस इसमें होता रहता है।
इनमें कोई बीजेपी का तरफदार है तो कोई कांग्रेस का, मगर संवाद तो होता है, सौहार्द नहीं टूटता। हताई में शामिल गोविंद कल्ला कहते हैं,
पूरे भारत से लगा करके प्रत्येक प्रांत और शहर की बातें यहाँ पर होती है। ये समाज का वो रूप है, दर्पण है जो पत्र पत्रिकाओं से पहले अपने विचार व्यक्त करता है और यहाँ पर सभी प्रकार के लोग जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर कोई करिकुलम नहीं है, कोई चौक नहीं है, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, फिर भी सबसे बड़ा अच्छा ज्ञान जो है प्रैक्टिकल ज्ञान यहाँ पर मिल जाता है।
इसी हताई में भागीदार एक बुजुर्ग इसकी व्यापकता का बखान करते हैं।
शाम को 9 बजे से शुरू हो जाती है और रात को 1:30-2 बजे तक खत्म होती है। ये तक यहाँ पर विचार विमर्श चलते रहते हैं, बहुत जोर के डिस्कशन होते हैं। कोई अगर डिस्कशन में नाराज हो गया तो हम उसके ऊपर पेनल्टी लगा देते हैं और वो पेनल्टी के पैसे से फिर मिठाइयाँ आती है, फिर शनिवार को खाते हैं।
अच्छा दिन आवेला सबने पूरो थो विश्वास, बाया कांग्रेस ने लाओ रे, क्यों बीजेपी का राज में थे धक्का खाओ रे, बाया कांग्रेस ने लाओ रे, क्यों बीजेपी का राज में थे धक्का खाओ रे।
बहस तो सियासत के सभा मंचों पर भी होती है, यहाँ भी तर्क है, तकरीरें हैं, लेकिन हताई ने कभी वो मंजर नहीं देखा जो बहस में राजनीति के सभा मंडपों में दिखता है। नारायण बारेठ, BBC, जोधपुर, राजस्थान।
BBC इंडिया बोल।
क्या 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 17 नवंबर को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
BBC इंडिया बोल।
और अब एक नज़र दिल्ली से छपने वाले अखबारों पर। हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी अखबारों के साथ स्टूडियो में आ गई हैं। कमलेश, किन खबरों ने आज पहले पन्ने पर जगह बनाई है?
आज पहले पन्ने पर 2 खबरें हैं, एक तो आंध्र प्रदेश से जुड़ी है, CBI से जुड़ी है, और दूसरी CBI के निदेशक आलोक वर्मा से जुड़ी है। दोनों CBI के मसले हैं। पहली खबर हम इंडियन एक्सप्रेस में देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने CBI को राज्य में काम करने की अनुमति वापस ले ली है। दरअसल CBI एक केंद्रीय एजेंसी है, तो वो इस राज्य में काम करने के लिए उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो अखबार ने लिखा है कि पश्चिम बंगाल भी आंध्र प्रदेश के इस फैसले का समर्थन कर सकती है। साथ ही अखबार ये भी लिखता है कि 2019 के चुनाव से पहले ये सरकार और गैर BJP राज्यों के बीच टकराव बढ़ा सकता है। साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि CBI के निदेशक, जिन्हें फिलहाल छुट्टी पर भेज दिया गया था भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, निदेशक आलोक वर्मा को केंद्रीय सतर्कता आयोग ने उन्हें लेकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CVC ने कुछ ऐसे आरोपों पर कहा है कि गंभीर अनियमितताएं उसे मिली है जिस पर जांच की आवश्यकता है, तो अभी क्लीन चिट नहीं मिली है, तो वो आलोक वर्मा अभी वापस अपने पद पर नहीं आ सकते हैं
जी।
और इस मामले में अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी और वर्मा से सोमवार तक जवाब मांगा गया है
जी। इधर जनसत्ता में इरफान का जो कार्टून छपा है उसके बारे में श्रोताओं को बता दूं, भारत ने सेनेगल को 2 ई-रिक्शे दिए हैं और कार्टून में ई-रिक्शा का ड्राइवर जो है वो बोल रहे हैं, ड्राइवर भी चाहिए हो तो बताना
जी। और दैनिक जागरण में खबर है कि दिल्ली सचिवालय की VVIP पार्किंग में एक कांस्टेबल ने, दिल्ली पुलिस के एक हवलदार सोहन वीर सिंह ने आत्महत्या कर ली और उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें खास बात यह है कि उनको पीटने का एक वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था, जिसके कारण बेइज्जती के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली
जी। अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए शुक्रिया कमलेश। और अब वक्त है हमारी साप्ताहिक पेशकश विवेचना का। शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे कुछ लोगों के लिए हीरो थे तो कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़े खलनायक। उन पर जहां मराठी मानुस के सबसे बड़े पैरोकार होने का तमगा लगा, वहीं सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई। बाल ठाकरे की 6वीं बरसी पर रेहान फसल याद कर रहे हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
जिंदा रहो, जिंदा रहने दो, ये पॉलिसी थी मेरी। किसी का इसमें कोई द्वेष नहीं था, हेट्रेड नहीं था किसी कम्युनिटी का। हर एक प्रांत में उनका अधिकार होता है, तो मैं मेरे लोगों का अधिकार उनके प्रांत में मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था।
ये आवाज है शिवसेना के नेता बाल ठाकरे की। अपने 40 सालों से भी अधिक के राजनीतिक जीवन में कोई भी ऐसा विषय नहीं हुआ करता था जिस पर ठाकरे की अपनी राय नहीं हुआ करती थी, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो या कला या खेल या कोई और भी विषय। बाल ठाकरे इस पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं करते थे। उनके शब्दों में अक्सर दूसरों के लिए परिहास होता था या नाकाबिले बर्दाश्त तीखापन।
मेरे मन की जलन होती है कुछ कि हमारे हिंदुस्तान में हमारा मान रखा ना जाए, और इस सेक्युलरिज्म के नाम पर, कोई धर्म निरपेक्षता के नाम पर और कोई धर्म के लोग बहुत कुछ फैसिलिटी हो, कोई सहूलतें हो, वो मिलती है उनको, ये कैसी बात है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा।
बाल ठाकरे मध्य प्रदेश के मराठी बोलने वाले कायस्थ परिवार से आते थे। बाल ठाकरे की जीवनी हिंदू हृदय सम्राट, हाउ द शिवसेना चेंज मुंबई फॉर एवर लिखने वाली सुजाता आनंदन बताती हैं।
के जो पिताजी हैं केशव ठाकरे, वैनिटी फेयर के जो ऑथर थे विलियम मेकपीस ठाकरे, केशव ठाकरे विलियम मेकपीस ठाकरे के एडमायरर थे। एज अ ट्रिब्यूट टू विलियम मेकपीस ठाकरे उन्होंने उसका अपना खुद का स्पेलिंग बदल लिया।
दिलचस्प बात यह है कि 60 और 70 के दशक में शिवसेना के मुंबई में जड़े जमाने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन दिनों मजाक में शिवसेना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव नायक और वसंत दादा पाटिल के नाम पर वसंत सेना कहा जाता था। कांग्रेस से कम्युनिस्टों और पार्टी के अंदर भी विरोधियों को शांत करने के लिए हिट मैन की तरह इस्तेमाल करती थी।
कम्युनिस्ट कांग्रेस को भी परेशान करते थे और ये टेक्सटाइल ओनर्स हैं इनको भी परेशान करते थे। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कांग्रेस के नेता हैं, इन दोनों ने एक साथ मिल करके तय किया कि हमको किसी न किसी तरह से ये इसका कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन का ग्रिप वर्कर्स के ऊपर पे तोड़ना है। तो उन्होंने बाल ठाकरे को आगे किया। वो फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट थे और उस जमाने में ज्यादातर जर्नलिस्ट लोग या ज्यादातर जितने सारे पत्रकार या एडिटर्स वगैरह होते थे वो सारे साउथ इंडियंस होते थे। आर के लक्ष्मण देश के जाने माने कार्टूनिस्ट थे, वो भी फ्री प्रेस जर्नल से ही ठाकरे के साथ ही उन्होंने काम किया, वहीं से निकले हैं वो, और उनके कार्टून हमेशा काफी अच्छे हुआ करते थे और एडिटर आर के लक्ष्मण के कार्टून चुनते थे। और बाल ठाकरे के दिमाग में ये बात गई कि ये पूरा साउथ इंडियन का डोमिनेशन है, तो वो साउथ इंडियन से चिढ़ते थे। बाल ठाकरे के पास फंडिंग कहाँ से आई अगर कांग्रेस ये इंडस्ट्रियलिस्ट ने मदद नहीं की उनकी तो अपनी पार्टी सेटअप करने के लिए। उन्होंने ठाकरे को आगे किया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस गंदगी में उतरना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने बाल ठाकरे को चुन करके आगे किया।
आपातकाल में उन्होंने सारे विपक्ष को दरकिनार कर इंदिरा गांधी का समर्थन किया। 1978 में जब जनता सरकार ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया तो उसके विरोध में बाल ठाकरे ने बंद का आयोजन किया। सुजाता आनंदन का कहना है कि 1975 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री एसपी चव्हाण ने बाल ठाकरे को इसके लिए बाध्य किया था।
एसपी चव्हाण अच्छी तरह से जानते थे कि अगर ठाकरे ऑपोजिशन के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी रैलीज या वगैरह कुछ होती है तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को बोला और दो चॉइस दिया उनको कि या तो आप जेल जाने के लिए तैयार हो नहीं तो दूरदर्शन के स्टूडियो में आकर के बोलो कि तुम इमरजेंसी को सपोर्ट करते हो। और फिर उनको ज्यादा समय नहीं लगा ये सोचने के लिए और फिर वो तैयार हो गए दूरदर्शन जाकर के इमरजेंसी सपोर्ट करने के लिए।
मुझे बाल ठाकरे से मिलने का मौका 2004 में मिला था जब मैं उनका इंटरव्यू लेने उनके निवास स्थान मातुश्री गया था। दुर्भाग्य से उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को कई सालों बाद बीबीसी के ही एक कार्यक्रम में कुछ इस तरह याद किया था।
छोटे से कमरे में एक सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठे हुए थे बाल ठाकरे, और जो बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि वो अकेले नहीं थे। आमतौर से जब हम लोग साक्षात्कार लेने जाते हैं तो वे व्यक्ति अकेला इंटरव्यू देता है और उनके अगल बगल पूरी उनकी कोठरी बैठी हुई थी 15 या 20 लोग। बल्कि मैंने धीमे से उनसे कहा कि क्या हम लोग इन सबके सामने आपसे बात करेंगे, तो बाला साहब ने हंसते हुए कहा कि मुझे कोई चीज अकेले में नहीं करनी, मैं सबके सामने करना पसंद करता हूँ। नाटक कद, भगवा कपड़े पहने हुए, रुद्राक्ष की काली माला, काला चश्मा, और जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की मुझे वो थी उनकी बेबाकी और आंखों में आंखें डालकर बोलने की उनकी अदा। बीच इंटरव्यू में मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आपकी नजर में बाबरी मस्जिद विवाद का कोई हल निकल सकता है। बाला साहब ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल हतप्रभ कर देने वाला था, बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे की याद में वहाँ स्मारक बनाया जाना चाहिए था। उनका ये कहना था कि पूरे कमरे में एक तरह से सन्नाटा छा गया, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या कह रहे हैं और मुझे खुद नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने दोबारा उनसे वो सवाल पूछा और उन्होंने वही बात दोहराई और उस बयान की बहुत चर्चा हुई।
बाल ठाकरे अपनी सार्वजनिक छवि के प्रति बहुत सचेत रहा करते थे। मशहूर पत्रकार वीर सांगवी ने बाल ठाकरे के चरित्र की इस खासियत पर अपने एक लेख में रोशनी डाली है।
मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों के काफी दिन बाद मणिरत्नम ने उस पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम रखा गया बॉम्बे। इस फिल्म में शिव सैनिकों को मुसलमानों को मारते और लूटते हुए दिखाया गया है। फिल्म के अंत में ठाकरे से मिलता जुलता चरित्र इस हिंसा पर अपना दुख प्रकट करता है। एक मुस्लिम नेता भी इसी तरह के विचार व्यक्त करता है। ठाकरे ने इस फिल्म के प्रदर्शन का विरोध किया और कहा कि वो उसे बंबई में प्रदर्शित नहीं होने देंगे। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन ठाकरे के दोस्त थे। वो उनके पास गए और पूछा कि क्या शिव सैनिकों को दंगाइयों के रूप में दिखाना उन्हें बुरा लगा। ठाकरे ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जो चीज बुरी लगी वो दंगों पर ठाकरे के चरित्र का दुख प्रकट करना था। मैं कभी किसी चीज पर दुख नहीं प्रकट करता।
बाल ठाकरे के चरित्र के विरोधाभासों को उनके एनसीपी नेता शरद पवार के संबंधों से परखा जा सकता है। दिन में वो पवार को आटे की बोरी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे और उसी शाम को उन्हें उनकी पत्नी प्रतिभा और बेटी सुप्रिया को अपने घर रात्रि भोज पर आमंत्रित करते थे। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं,
बाला साहब का उसूल था कि अगर आप एक बार उनके दोस्त बन गए तो ताउम्र उनके दोस्त बने रहेंगे। सितंबर 2006 में जब मेरी बेटी सुप्रिया ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की तो बाला साहब ने मुझे फोन किया। वो बोले, शरद बाबू, मैं सुन रहा हूं हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही हैं और तुमने मुझे इसके बारे में बताया ही नहीं, मुझे ये खबर दूसरों से क्यों मिल रही है? मैंने कहा, शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने पहले ही उसके खिलाफ अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। मैंने सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं। ठाकरे बोले, मैंने उसे तब से देखा है जब वो मेरे घुटनों के बराबर हुआ करती थी। मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ नहीं लड़ेगा, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैंने उनसे पूछा, आप बीजेपी का क्या करेंगे जिनके साथ आपका गठबंधन है? उन्होंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, कमला बाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जो मैं कहूंगा।
बाल ठाकरे सिगार और बियर पीने के शौकीन थे। सार्वजनिक तौर पर शराब पीने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। 1995 में जब उनकी पार्टी की जीत पर एक पार्टी दी गई तो उन्होंने इस बात पर एतराज किया कि वहां जीत की खुशी में शैंपेन का प्रबंध क्यों नहीं है।
ठाकरे इतना परेशान हो गए थे सिर्फ फ्रूट जूस पी करके, क्योंकि उनकी आदत थी कि हर शाम को वो कम से कम 2 बॉटल बियर पिया करते थे। उन्होंने फिर डॉक्टर हीरानंदानी को बोला कि डॉक्टर हीरानंदानी, यू आर एन ENT स्पेशलिस्ट, ई इज फॉर द ईयर यानी ई कान के लिए, और मुझे बहुत ही सुंदर म्यूजिक सुनाई आ रहा है। N इज फॉर नोज यानी नाक के लिए, और मुझे बहुत ही खुशबू आ रही है जो जितना भी खाना बन रहा है अंदर किचन में। टी इज फॉर थ्रोट यानी कंठ के लिए है, और मेरा कंठ एकदम सूख रहा है। डॉक्टर हीरानंदानी बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने तो ये दारू नहीं हम ला सकते। मनोहर जोशी जो चीफ मिनिस्टर थोड़ी दूरी पर पे खड़े थे, बाल ठाकरे की इतनी ऊंची आवाज, और फिर उन्होंने उसको और ऊंचा करके उन्होंने फिर मनोहर जोशी की तरफ देख करके बोला, कायरे मान्या तू पीतोस नायका, इसका मतलब कि क्या मनोहर तुम पीते नहीं हो क्या। मनोहर जोशी कुछ कह नहीं सके। फिर उसके बाद बियर वगैरह सब लाया गया।
मराठी मानूस के सबसे बड़े रोकार, हिंदू हितों के रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे ने सिर्फ अपने मुंह पर मुंबई को बदल कर रख दिया। न सिर्फ उसका नाम बल्कि उसका चरित्र और ताना बाना भी। बाल ठाकरे का आकलन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार कुमार केटकर कहते हैं,
उद्धव यू आर राज हो या नारायण राणे हो या छगन भुजबल हो या मनोज जोशी हो या संजय राउत हो, किसी भी नेता की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है कि जो पूरे महाराष्ट्र के युवा को अपील कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बाल ठाकरे का अपील पूरे महाराष्ट्र में था, पश्चिम महाराष्ट्र में उनका बहुत ही कम अपील था, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी उनका ज्यादा सपोर्ट नहीं था। उनका शक्ति स्थान था मुंबई और शक्ति स्थान दूसरा बन रहा था पुणे। शहरी विभागों से बाहर ग्रामीण विभागों में फार्मर्स में शिवसेना का ज्यादातर कोई रोल नहीं रहा था।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
बाल ठाकरे पर रेहान फजल की विवेचना आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर कमलेश मठेनी से।
अमेरिका में कोर्ट के आदेश के बाद CNN के वरिष्ठ पत्रकार जिम एकोस्टा का प्रेस हार्ड पास लौटा दिया गया है। फेडरल जज टिमोथी केली ने व्हाइट हाउस को पास लौटाने का निर्देश दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यमन युद्ध के दोनों पक्षों ने स्वीडन में शांति वार्ता के लिए सहमति जताई है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमरीका के विशेष अधिवक्ता रॉबर्ट मुलर द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब लिख लिए हैं। रॉबर्ट मुलर साल 2016 में हुए अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की भूमिका की जाँच कर रहे हैं। उत्तर पूर्व कैम्ब्रिजशायर से सांसद स्टीफन बार्कले को टेरिजा मे कैबिनेट में नए ब्रेक्जिट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। स्टीफन बार्कले ब्रेक्जिट के समर्थक माने जाते हैं। अमरीका ने पहली बार इसराइल के गोलन हाइट्स के कब्जे की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिनभर शाम 7:30 बजे। तब तक आपके साथ है बीबीसी हिंदी का .com पन्ना। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।